एक्साइटमेंट। लेकिन अगर वीर और वसुंधरा ने मेरे हंसते खिलते परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उस वक्त आप दोनों बीच में नहीं आएंगे। अरमान की बातों में अनकही वार्निंग छुपी हुई थी। अरमान ने जैसे ही एक एक शब्द चबा चबा कर धीमे स्वर में समझाया, वैसे ही अभिमान जी और दादाजी के रोंगटे ही खड़े हो गए थे। अब आगे, क्योंकि भले ही अरमान बड़े नॉर्मली बातें कर रहा था, लेकिन उसकी लाल आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि इस सच ने उसे कितना ज्यादा दर्द दिया है। वहीं अभिमान अरमान से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तब तक अरमान लंबे लंबे टिक भरता हुआ तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गया था। वहीं अरमान के जाने के बाद अभिमान जी अपना सर पकड़कर बैठ गए थे और अगले ही पल उन्होंने दादाजी की ओर परेशानी भरी नजरों से देखा, फिर कड़वी सी स्माइल करके बोले, देखा आपने, अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम उसे यहाँ लेकर आ रहे हैं, और पिताजी आप बेकार में ही जिद पकड़कर बैठे हैं। हमें उन्हें कहीं और अलग जगह रखना चाहिए। वो लोग हमारे परिवार के लिए पूरी तरह से खतरा है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, और ये जानते समझते हुए भी हम उन्हें यहाँ लेकर भला कैसे आ सकते हैं। अभिमान की बातें सुनकर दादाजी कुछ पल शांत रहे और फिर उठ खड़े हुए और कॉन्फिडेंस से बोले, देखा नहीं तूने तेरा बेटा क्या कहकर गया है, उन्हें आने दो। अगर वाकई वो बदल चुके हैं और वो हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो वो इस घर में रह सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई भी घटिया हरकत करने की कोशिश की तो फिर तुम तो जानते ही हो ना, तुम्हारा बेटा उन्हें इतनी आसानी से किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। फिलहाल तो तुम रिलैक्स रहो, ठीक है, और कम से कम उन्हें कुछ दिन अपनी आंखों के सामने देखने के बाद और हमारे मन को थोड़ी बहुत तसल्ली भी हो जाएगी कि हमने तुम्हारी औलाद के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश की थी। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? दादाजी की बात सुनकर अभिमान जी एकदम से चुप हो गए थे और दादाजी अब अभिमान जी को समझाने के बाद सीधे कमरे से बाहर निकल गए। दूसरी ओर वहीं वसुंधरा और वीर, जिन्हें वहां से सीधा शहर से बाहर फेंकना था, लेकिन अब अरमान के ऑर्डर पर उन्हें वापस से सिंघानिया डंशन लाया जा रहा था, और जब से वसुंधरा को ये पता चला था वो पूरी तरह से खुशी से झूम रही थी। वो तो कब से इसी बात के इंतजार में थी कि कोई ना कोई मौका आए और उसे वापस से सिंघानिया मेंशन जाना पड़े, लेकिन उसे इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी इतनी सी भी गलती इस बार उसे सीधा मौत के घाट उतारने वाली थी, क्योंकि इस बार अरमान बिना झिझके उसके प्राण ले चुका होगा। फिलहाल उसने वीर को रास्ते में अच्छी तरह से समझा बुझा दिया था कि उसे नॉर्मली बर्ताव करना है, वो किसी भी तरह की कोई घटिया चाल ना चले और ना ही वो किसी तरह की चाल चलेगी, क्योंकि उन्हें सबसे पहले वहां सबका भरोसा जीतना होगा और धीरे धीरे उन्हें सिंघानिया मेंशन के साथ साथ पूरे सिंघानिया अंपायर को भी अपने नाम करवाना है। कहीं ना कहीं इसी मकसद के साथ वो सिंघानिया मेंशन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह से अरमान से सभी प्रॉपर्टी के कागजों पर हस्ताक्षर करवाने का, और उसके लिए उन्हें बहुत ही सब्र से काम लेना था। कहीं ना कहीं अपनी पूरी चाल चलने के लिए वो लोग सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अरमान अपने जिम रूम में मौजूद था। एक बार फिर अरमान में पहले वाले अरमान की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने लगातार पंचिंग बैग पर पंच करना शुरू कर दिया था। कितनी ही देर तक वो खुद को सजा देता रहा वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। जिस वीर से वो दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हुआ आया है, जिस वसुंधरा को बचपन से ही उसने नफरत के तौर पर देखा है, वो इस तरह से उसकी जिंदगी में आ धमकेगी और उसे हर रोज उनकी शक्ल देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से अरमान सिंघानिया मेंशन को छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि सिंघानिया मेंशन की बुनियाद ही अरमान से थी। लेकिन अरमान इस तरह से अपने पिता और दादाजी के इमोशंस को भी अनदेखा नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी वीर और वसुंधरा को सिंघानिया मेंशन में रहने की इजाजत दे दी थी। साथ ही साथ उसने उन दोनों को एक मौका देने के बारे में भी सोच लिया था और इस बात के बारे में भी सोच लिया था कि अगर उन्होंने किसी भी तरह की कोई घटिया चाल चलने की कोशिश की तो अरमान सिंघानिया इस बार उन्हें माफ करना तो दूर की बात है, बल्कि वो उन्हें जिंदा तक नहीं रहने देगा। फिलहाल वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में रघुवंशी मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अविनाश फोन पर ही सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि आस्था के स्वागत में इतनी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आखिरकार बरसों बाद उसकी बहन उसके साथ वापस घर लौट रही थी तो अविनाश इस मोमेंट्स को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाना चाहता था। उस समय आस्था का स्वागत करने के लिए पूरे रघुवंशी अंपायर के साथ काम करने वाले लोग वहां मौजूद थे और सभी बेसब्री से आस्था के आने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही अविनाश का चौपर रघुवंशी मेंशन के बड़े से गार्डन में लैंड हुआ तो आस्था के दादाजी की धड़कनें पूरी तरह से बढ़ने लगी थीं और वो अपनी व्हीलचेयर के साथ गार्डन में ही आ गए थे और वो एकटक उस चौपर की ओर ही देखे जा रहे थे जहां से आस्था उतरकर उनके पास आने वाली थी। आस्था के दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। अविनाश के बाद पहली बार वो किसी अपने से मिलने वाली थी। दादाजी से मिलने की खुशी उसकी कुछ अलग ही थी। हालांकि अरमान से अलग होने पर उसका दिल पूरी तरह से भारी हो रहा था, लेकिन पहली बार वो अपने किसी सगे रिश्तेदार से मिल रही थी तो उसके दिल की हालत अजीब सी हो गई थी। अजीब सी गुदगुदी उसके दिल में महसूस हो रही थी। फिलहाल जल्दी ही आस्था रघुवंशी मेंशन के शानदार से गार्डन में मौजूद थी और उसने अंश को गोद में थामा हुआ था। और चौपर के वापस जाने के बाद आस्था की निगाहें नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए बड़ी ही कमाल की शख्सियत यानी कि अधिराज रघुवंशी आस्था के दादाजी पर गई। अपने दादाजी को देख के आस्था अब खुद को रोक नहीं पाई और अंश को अविनाश की गोद में सौंपते हुए तेजी से दौड़कर अपने दादाजी से लिपट गई। वहीं एंजल की आंखें भी ये दृश्य देखकर पूरी तरह से भर आई थी, क्योंकि एंजल आस्था की बचपन की तस्वीर से अनजाने में नफरत करती हुई आई थी। उसे रह रहकर यही लगा करता था कि अविनाश किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसे शायद वो प्यार करता है या फिर वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन जब से उसे ये पता चला कि अविनाश पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढ रहा है, तब से आस्था को लेकर उसकी फीलिंग उसके जज्बात पूरी तरह से बदल चुके थे और वो भी अब अविनाश की तरह आस्था को बहुत प्यार करने लगी थी। फिलहाल अधिराज सिंह जी अब बरसों बाद अपनी प्यारी पोती को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। कभी वो उसके गालों को चूम रहे थे, कभी आस्था के हाथों को देख रहे थे और अचानक उनकी आंखों के सामने आस्था का वो जन्मदिन याद आने लगा जिस दिन उनके परिवार पर राजवीर साइको किलर एकदम काल बनकर टूटा था। दादाजी आस्था से मिलने के बाद कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए थे। अचानक ही उनकी पलकें फड़फड़ाने लगी और उनकी आंखें भारी होने लगी। ये देखकर आस्था थोड़ा सा घबरा गई और घबरा कर उसने अविनाश की ओर मदद के लिए देखा। अविनाश ने आंखों ही आंखों में आस्था को शांत रहने का इशारा किया और उसे धीमी मगर मीठी आवाज में कहा, दादाजी तुम्हें इतने सालों बाद वापस देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं। शायद इतनी एक्साइटमेंट वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो जाएंगे। जल्दी ही अविनाश ने कुछ लोगों को इशारा किया और जल्दी ही कितने सारे लोग वहां दौड़े चले आए और फिर दादाजी को अपने साथ लेकर जाने लगे। उनके जाने के बाद कितने सारे ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स वहां गए और आस्था का फूलों से स्वागत करने लगे।
आस्था जिस जिस जगह से जा रही थी उस जगह पर फूल बरसाए जा रहे थे। आस्था इतना भव्य स्वागत देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। पहली बार आस्था अपनी ससुराल से मायके आई थी और मायके में आकर उसे ढेर सारा प्यार मिल रहा था। इस वक्त उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, वरना बचपन से लेकर आज तक नानी माँ के अलावा उसकी जिंदगी में मायके के नाम पर कोई नहीं था। अगर कोई था तो वो थी नानी माँ, लेकिन आज उसे भरे रिश्ते मिले थे तो इस वक्त उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। आस्था ने जल्दी ही खुशी के साथ रघुवंशी मेंशन में अपना पहला कदम रखा और वहां पर उसका बिल्कुल इंडियन तरीके से भव्य स्वागत हुआ। आस्था के कदमों की छाप को थाल में उतारा गया था। तब तक दादाजी भी थोड़ा स्टेबल हो गए थे और सब कुछ अपनी आंखों से खुश होकर देख रहे थे और अचानक भावुक होकर धीरे से बुदबुदाएं, मेरी कोरी वापस लौट आई। अब आस्था ने एक बार और दादाजी से मुलाकात की और उनके हाथों में अपने नन्हे से अंश को थमा दिया। अंश को देखकर तो दादाजी और भी ज्यादा भावुक हो उठे और एक्साइटेड होकर बोले, ये तो बिल्कुल मेरी गोरी जैसा है। पता है बेटा, जब तू छोटी थी बिल्कुल ऐसी ही थी। ये बोलकर उन्होंने अंश के माथे को चूम लिया था और उसे पुचकारने लगे। आस्था इस वक्त फूली नहीं समा रही थी और कब वो पूरी तरह से अपने परिवार में घुल मिल गई उसे पता ही नहीं चला। और कितनी ही देर तक वो अपने दादाजी से अपने बचपन के किस्से सुनती रही, फिर उसके बाद अपने माँ बाप की फोटो के सामने कितनी ही देर तक खड़ी होकर जोती रही। एक बार फिर आस्था अपने परिवार को देखकर अपने दादाजी से मिलकर उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे थे और आज एक बार फिर जाने अनजाने में ही सही आस्था को राजवीर जिंदल की याद आ गई थी। कहीं ना कहीं आस्था सोच रही थी कि राजवीर जिंदल ने उसकी जिंदगी के साथ कितना बुरा किया। उसके परिवार में उसके माता पिता को बेरहमी से मार डाला और उसके दादाजी के पैर छीन लिए। काश राजवीर जिंदल जिंदा होता तो आस्था उसे इस बार अपने हाथों से मार डालती। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था की आंखों गुस्से से भड़क उठी थी, क्योंकि इस वक्त वो अपनी माँ की फोटो को सीने से लगाए बैठी हुई थी। वहीं दूसरी ओर नाइजीरिया के अस्पताल में राजवीर को एक बार फिर होश आ चुका था और इस बार वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ। शांत तरीके से वो हॉस्पिटल की बेड पर ही पड़ा रहा। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि शायद वो अपनी गहरी आंखों से कुछ अनुमान या अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसने जल्दी ही एक नर्स को देखकर कहा कि उसे सम्राट से मिलना है। अब ये सुनकर नर्स थोड़ा चौंक गई और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर देर ना करते हुए उसने जल्दी ही 24 घंटे राजवीर की निगरानी करने वाले गार्ड को इस बारे में बता दिया था कि अंदर लेटे हुए पेशेंट को होश आ गया है। अब ये सुनकर वो गार्ड पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था और जल्द ही उसने सम्राट को नोटिफिकेशन छोड़ दी थी। और सम्राट को जैसे ये पता चला कि राजवीर को एक बार फिर होश आ गया है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने खुश होकर रॉकी को देखकर अचानक ऑर्डर दिया, चलो अब एक काम तो तुम ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा काम देता हूँ। मेरे गुरु राजवीर जिंदल को होश आ गया है, जाओ जाकर उन्हें सही सलामत मेरे मेंशन में लेकर आओ और यहाँ का सबसे बड़ा शानदार कमरा उनके लिए तैयार करवाओ।
अब जैसे ही सम्राट ने ये इंस्ट्रक्शन दिया तो ये सुनकर रॉकी ने मन ही मन में राहत की सांस ली थी, क्योंकि कम से कम उसकी जान तो बच गई थी। हालांकि उसका शरीर दर्द से पूरी तरह से टूटा जा रहा था, लेकिन वो अब और देर नहीं करना चाहता था और इसीलिए देर न करते हुए उसने राजवीर के स्वागत की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा था राजवीर के दिमाग में और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।